ओम शांति। सभी बहुत प्यार से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। अभी भी भाई बहनों से अनुरोध है कि वो सामने आ जाएं, बहुत स्थान खाली है, नजदीक में आ जाएं। सभी अपना स्थान सामने ले ले, अच्छा होगा। आज आप सभी भाई बहने अथवा युगल मुहूर्त ज्ञान और योग के तपस्या में योग भट्टी का आनंद ले रहे हैं और दादियां, बड़ी बड़ी दीदियां, बड़े महारथी भाई सभी आपका श्रृंगार कर रहे हैं, ज्ञान रत्नों से भरपूर कर रहे हैं। भट्टी माना ही परिवर्तन और भट्टी माना अनुभूति। और भट्टी भी किस प्रकार की है, दुनिया में बहुत भट्टी होती। पहले जमाने में कपड़ा धुलाई के लिए भी भट्टी चढ़ाई जाती थी, मिट्टी के बर्तन को भी पकाने के लिए भट्टियां होती और ईंटों को पक्का करने के लिए भी भट्ठे बड़े बड़े होते हैं। लेकिन अपनी है योग भट्टी, तपस्या की भट्टी, अर्थात परिवर्तन की भट्टी। तो प्रश्न उठता है कि योग तो हम घर में भी लगाते हैं, सेवा केंद्र पर जाते वहां भी योग तपस्या करते हैं, और बाबा ने हम बच्चों को महामंत्र ही दिया है कि बच्चे चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर कर्म करते योग में रहना है। योग लगाना योगी बनना नहीं, आप बच्चों का योगी जीवन हो, तपस्वी जीवन हो। तो योग लगाना कोई बड़ी बात नहीं, योग का अनुभव करना भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमारा पहले दिन का जो पाठ है, आप सभी को भी पहले दिन का पाठ जो पढ़ाया गया वो यही पढ़ाया गया कि मैं कौन हूं और किसकी संतान हूं। तो ये हमको पाठ पढ़ाया भी गया और निश्चय भी कराया गया। तो जब मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, शरीर हमारा एक वस्त्र है, शरीर हमारा एक मोटर है, हमारी कर्म इंद्रियां एक यंत्र है, तो मैं आत्मा हूं। तो ये याद आते ही मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं और शांति के सागर की संतान हूं, शांति धाम की निवासी हूं। तो योग तो हमारा लग ही गया, क्योंकि परिचय मिला, परिचय के साथ हमने निश्चय किया और निश्चय करते पिता परमात्मा से अपना संबंध जोड़ा। तो हमारे कितने संबंध हैं, एक एक संबंध को यदि हम याद करें कि वो हमारे माँ भी है, पिता भी है, बंधु, सखा, शिक्षक, सतगुरु। तो जब हमारा एक ही रिश्ता है तो दूसरा कोई रास्ता है आगे जाने का तो रास्ता भी एक है। तो एक रिश्ता है तो बुद्धि कहाँ जाएगी? यदि पिता को याद करना है तो भी बुद्धि कहाँ जा रही है? जो हमारा अनादि अविनाशी परम धाम निवासी निराकार शिव परमात्मा पिता है, हम उसकी संतान है। और यदि वो हमारा शिक्षक माने, क्योंकि हम बाबा के बच्चे बनते हैं, तो साथ साथ विद्यार्थी भी बनते हैं, गॉडली स्टूडेंट भी बनते हैं। तो हमें पढ़ाने वाला कौन है? परम धाम से रोज आ करके ज्ञान सुनाने वाला, योग सिखाने वाला, ये सब कौन है हमारा परम शिक्षक? तो भी हमारा बुद्धि योग उसके साथ लगा हुआ है। फिर हमारा परम सतगुरु है, परम सतगुरु के साथ मन मना भव, यही हमको मंत्र दिया, मन मना भव। तो मन को मेरे में लगा दो। तो मन लगाना यही योग है। आज आप अपने बच्चे को कहते हैं, बेटा मन लगा के पढ़ो। कोई कार्य करना है तो क्या कहेंगे? मन लगा के ये कार्य करो, मन से करो। करता हाथ है, देखती आंखें हैं, लेकिन कहते क्या है? जो भी कार्य करो मन लगा के करो। तो योग भी किससे करेंगे? आंखों से करेंगे, मुख से करेंगे, मंत्र जाप करेंगे या माला जाप करेंगे? वो तो बहुत करते आए और सुनते भी आए कि कर का मन का छोड़ के मन का फेर, क्योंकि माला फेरत जुग गए, गया न मन का फेर। तो माला तो फेरते रहे, मंदिर में भी गए का मंदिर में बैठे मन मंडी में घुमाते हैं और घुमाते हैं माला, सारा शहर घूम आते हैं। अब तुम ही बताओ वो ध्यान क्या करेगा? तो बाबा भी कहते मन से मुझे याद करो। तो जो बात हम बच्चों को सिखाते हैं कि मन से काम करो, मन से पढ़ाई पढ़ो, मन लगा करके पढ़ो, बुद्धि को एकाग्र करके पढ़ो, जब एकाग्र करेंगे तब ही तो आपको याद होगा पाठ। तो हम भी चलते फिरते उठते बैठते मन लगा करके ही काम करें तो हमारा मन कहाँ होगा? कहते यहाँ हमारा तन होगा और वहाँ हमारा मन होगा। तो वहाँ से मतलब है बाबा के साथ और अपने घर परम धाम। तो जब हम ये याद रखते हैं, बाबा ने हमको याद दिलाया तुम आत्मा हो, केवल आत्मा का परिचय नहीं दिया, अपना भी पूरा परिचय दिया कि मैं जो हूँ जैसा हूँ उसी रीति से मुझे याद करो। और साथ साथ बाबा ने समय का भी ज्ञान दिया है जब हम समय याद रखेंगे कि अभी संगम युग है और संगम युग माना दो का मेल, जिसमें हम क्या कहेंगे कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है। जब सतयुग आ रहा है और बाबा हम बच्चों को सतयुग की बादशाही स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं, नरक से स्वर्ग में ले चलने के लिए आए हैं, तो समय पर कौन सा कार्य करना वो हमको ज्ञान दिया। आज एक पंछी है वो भी सवेरे घोंसला छोड़ देता है, बाहर विचरण करता है और अपने पेट पूजा के लिए जगह जगह उड़ता है बच्चों को पालने के लिए। लेकिन वही पंछी जो अपने लिए चारा ढूंढता है और अपने बच्चों के लिए लाके मुख में देता है, जब शाम होती है वापस घोंसले में आ जाता है। इतनी समझ पंछी को भी है कि समय अनुसार मुझे क्या करना है। गाय भी सुबह जाती है, शाम को वापस घर अपने आप आ जाती है। तो हम आत्माओं को बाबा ने जब ये समय का ज्ञान दिया कि संगम युग है, तो जब हम समय को याद करते हैं तो घर वापस जाने का भी है और सतयुग में आने का भी समय। उसकी कमाई हमको यहां करनी है और उस कमाई का आधार, राजाई पाने का आधार योग बल है। संगम युग रिकॉर्डिंग का युग है। जब कोई रिकॉर्डिंग की जाती है बहुत ध्यान से किया जाता है, यहां तक कि रिकॉर्डिंग रूम को साउंड प्रूफ बनाते हैं। अभी हम अपने 84 जन्मों का रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं, आत्मा में रिकॉर्ड भर रहे हैं, तो हमें कितनी सावधानी से करना होगा। अगर हमारा रिकॉर्ड भरते भरते कहीं फॉल्ट हो गया तो उस समय पर वही प्ले होगा जो हमने भरा है। हमको पूज्य बनना है तो ये भी ध्यान से करना है। बाबा ने लक्ष्य दिया है कि नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनना है, तो नर से नारायण बनने के लिए मुझे क्या करना है। अपने आप को भी तो तराशना है, अपने आप को सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनाना है। राजाई 3 प्रकार से मिलती है। एक राजाई तो है बहुत धन दान किया, धन के बल से राजा के घर में जन्म ले लिया, या बाहों बल से चढ़ाई करके लड़ाई करके राज्य ले लिया। और साथ में एक है जो बाबा हम बच्चों को अटल अखंड सुख शांति में राज्य 21 जन्मों के लिए देते हैं, तो वो लड़ाई और चढ़ाई बाहों बल से नहीं, धन के बल से नहीं, लेकिन वो राजाई किसके बल से मिलेगी, योग बल से। तो मुझे राजाई लेनी है और यही समय है राजाई के संस्कार भरने के, तो योग तो लगाना नहीं पड़ेगा, लगा रहेगा। देवताओं के लिए कहा गया कि उनके नयन, उनके मुख, उनके हस्त चरण एक एक अंग कमल के समान, मुख कमल, नयन कमल, हस्त कमल चरण कमल, तो हमारे को देखना है कि हमारे नयन कमल समान बने, हमारे मुख से जो भाषा है या मुख हमारा कमल समान बना, मेरे हाथों से वो शुभ कार्य हो रहे हैं तो हमारे कर्म भी कमल समान, हस्त कमल समान। इसलिए लक्ष्मी को कमल पुष्प का आसन दिखाया है। तो जब ये हम याद रखते हैं तो हमारा योग निश्चित है, लगा रहता है, लगाना नहीं पड़ता है। जो बाबा ने हमें दिनचर्या दिया, जो बाबा ने हम बच्चों को लक्ष्य दिया, तो जब हम लक्ष्य को याद रखेंगे, सब आत्मा से ही रिलेटेड है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, अपने स्वरूप को याद करना, फिर साथ साथ अपने स्वधर्म को याद करना, क्योंकि बाबा ने हमको बताया आत्मा का स्वधर्म शांति और पवित्रता। तो जन्म से बाबा ने वरदान दिया पवित्र भव योगी भव, ये पहला वरदान बाबा ने दिया। तो अपना स्वधर्म याद रखेंगे तो भी योग लगा रहेगा। फिर बाबा ने कहा बच्चे अपना स्वकर्म याद रखो कि मुझ आत्मा का स्वकर्म क्या है। तो रोज हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं, सुख देना सुख लेना, ना दुख देना ना दुख लेना। जो भी हमारे कर्म बाबा विश्व कल्याणकारी है और बच्चों को भी विश्व कल्याणकारी बनाते हैं। तो जब अपने स्वकर्म को याद रखेंगे तो निश्चित है बाबा भी याद रहेगा कि बाबा कल्याणकारी के हम बच्चे कल्याणकारी हैं। फिर अपने स्वकर्म के साथ स्वलक्षण भी याद रखना है, क्योंकि लक्षण ही हमें लक्ष्य तक पहुंचाएगा। तो वो लक्षण स्वतः आएगा। तो हमारा स्वलक्षण क्या है, जिसको सुलक्षण भी कहें, किसी प्रकार का हमारे लक्षण में कुशब्द न जुड़ा हो। आप देखेंगे अगर अपनी स्मृति व्रति दृष्टि कर्म संस्कार चलन सब में यदि कहीं कु जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, अच्छा या बुरा। समझो स्मृति में या हमारी बुद्धि में कु जुड़ जाए तो क्या होगा, क्या कहेंगे, कुबुद्धि कहेंगे ना। और दृष्टि में कु लग जाए तो सभी समझते हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे, क्या कहेंगे, कुदृष्टि कहेंगे, कुवचन कहेंगे। कर्म में कु लगा तो कुकर्म कहेंगे, चलन में कु लगा तो कुचलन, संस्कार में लगा तो कुसंस्कार। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को कहा तुम्हारे स्वलक्षण यानी सुलक्षण हो तो कु हट जाएगा और सु लग जाएगा, तो सब अच्छा अच्छा होगा, श्रेष्ठ होगा। तो श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान देने वाला कौन है, ज्ञान सागर बाप। तो बाबा से हमारा बुद्धि योग लगा रहेगा और फिर स्वलक्षण के साथ हमारा स्वलक्ष्य क्या है, मनुष्य देवता बनना, तो देवताई गुण स्वतः आते जाएंगे। जन्म से कोई डॉक्टर नहीं होता, इंजीनियर नहीं होता, वैज्ञानिक नहीं होता, नेता अभिनेता नहीं होता। जब जीवन का लक्ष्य बना लेता है तो स्वतः वो लक्षण आते जाते हैं। बाबा ने हमको स्वलक्ष्य दिया है कि देवता बनना है। पहले किसी में अच्छे गुण होते थे, कहते थे फलाने देवता समान है, फलानी देवी के समान है। लेकिन अब अगर किसी के अंदर अच्छाई है तो देवता से नहीं जोड़ते हैं। किसी का गला बहुत अच्छा है, आवाज सुरीली है, तो उसको क्या कहेंगे, कोयल जैसी है। जानवरों से जोड़ते हैं, पंछियों से जोड़ते हैं। किसी की आंखें सुंदर हैं तो ये नहीं कहेंगे जैसे देवी लगती है, नहीं, मृगनयनी कहेंगे, जानवर से जोड़ दिया। अगर किसी की चाल अच्छी है तो देवताओं की चाल है, फरिश्तों की चाल है, उससे नहीं जोड़ेंगे। वो भी एक जानवर से, मोरनी जैसी चाल है। तो जानवरों से लक्षण की तुलना किसकी कर रहे हैं, जो आज हम सब श्रेष्ठ मानव हैं। तो इसका रीजन है, कारण है कि जो बाबा ने हमको ये लक्ष्य दिया कि तुम आत्मा पवित्र स्वरूप हो, उस पवित्रता से दूर चले गए, इसलिए वरदान दिया पवित्र भव। तो ये लक्षण देवताओं के हैं, ना कि जानवरों से जोड़ा जाए। तो स्वलक्ष्य को प्राप्त होंगे। और साथ साथ याद रहे, हमारा स्वदेश, जब हम परम धाम है, जहां पिता का घर वो हम बच्चों का घर, जिसको शांति धाम भी कहते, मुक्ति धाम भी कहते, निराकारी दुनिया भी कहते, तो वहां हमारी जो स्थिति है वो निराकारी स्थिति है, बीज रूप स्थिति है, अशरीरी स्थिति है। तो हम अपने घर में किस रूप से रहते, और घर जाने का समय आ गया है, तो हमें वही अवस्था बनानी है। अशरीरी आए थे, अशरीरी बन के जाना है, शरीर लेकर के नहीं जाना है। यहां ड्रामा का पार्ट पूरा करके शरीर रूपी वस्त्र को उतार के जाना है। तो जब हमें ये याद रहेगा अपना स्वदेश, तो हमारी स्थिति निराकारी होगी। और बाबा को याद करने का पहला आधार, पहली विधि, आत्मिक स्थिति, अशरीरी स्थिति, अव्यक्त स्थिति। तब हमारे जो भी लक्षण होंगे वो देवताई फरिश्ते जैसे। हम स्टूडेंट हैं, हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अगर ये याद रहे तो भी हमारी बुद्धि कहीं नहीं जाएगी। मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना रहेगा। हमारी पढ़ाई दो शब्दों की है, मन मना भव, मध्याजी भव। बाबा ने हम बच्चों को लंबी चौड़ी पढ़ाई नहीं पढ़ाई है, क्योंकि सहज ज्ञान और सहज योग है। तो मुझे देवता बनना है, पढ़ाई पढ़नी है, लेकिन पढ़ाई के साथ हमारी लड़ाई भी है, पढ़ाई भी है, लड़ाई भी है। हम योद्धा हैं, वो जो योद्धा होते हैं वो रात को युद्ध नहीं करते, जितनी लड़ाई होती दिन में होती है। रात अपने अपने बंकर में भी सो जाएंगे, लेकिन आत्मा का संगम युग में श्वासों श्वास लड़ाई है, सोते भी लड़ाई है, जागते भी लड़ाई है, माया से युद्ध कर रहे हैं। तो बाबा ने विजयी भाव का वरदान दिया है। अब युद्ध करने के लिए हमारे पास अस्त्र शस्त्र क्या है, जो माया के ऊपर विजय प्राप्त करें, प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करें, और साथ साथ इंद्रियों के ऊपर भी विजय प्राप्त करें। तो पहले समय के जो राजे लोग लड़ाई करते थे, उनके पास तीन चीजें होती थी। एक तो होता था तलवार, एटम बम से नहीं लड़ाई की थी, और दूसरा होता था हाथ में कवच ढाल, और तीसरा बुलेट प्रूफ सदरी जिसको कवच कहते हैं। तो बाबा ने हम रूहानी योद्धा को ये तीन चीजें दिया हुआ है। हमको ज्ञान की तलवार दी है, ज्ञान से हम कैसे बुराइयों का गला काटते जाएं, माया का गला काटते जाएं। लेकिन माया भी कम नहीं है, अगर बाबा सर्वशक्तिवान है तो माया भी शक्तिवान है। आधा कल्प उसने भी हमारे ऊपर राज्य किया है, हमको गुलाम बना के रखा है, तो वो भी ताकतवर है। तो बाबा कहते हो कभी आपके ऊपर कोई बर्छी फेंकेगी, कभी कोई फेंकेगी, लेकिन उसका आपके ऊपर चोट ना आए। कभी मोह का होगा, कभी लोभ का होगा, सब पे विजय पा लेंगे, पांच मोटे मोटे विकारों पर। तो निंदा का, स्तुति का, मान का, अपमान का, हानि का, लाभ का, दुख सुख का, बहुत सारे उसके औजार हैं लड़ने के लिए उसके पास। वो हथियार अपना काम करेगा, उसके लिए चाहिए ढाल जिससे हम अपना बचाव कर सकें। तो बाबा ने हमको ढाल दिया है, ड्रामा का ढाल। हर वक्त अपने आप को सेफ करने के लिए और मन की शक्ति ना बर्बाद हो, वेस्ट ना जाए, व्यर्थ ना जाए, एकाग्रता बनी रहे, एक रस हमारी स्थिति बनी रहे, मन हिले नहीं, अंगद की तरह कैसा भी रावण की सेना हिलाना चाहे तो मन और बुद्धि दोनों पैर जमे रहे, स्थिर बने रहे, तो ड्रामा की ढाल है। जो हो रहा वो अच्छा, और जो भविष्य में होगा और अच्छा। जो हुआ फुल स्टॉप, ड्रामा में था पूरा हुआ। जब हम मुख से तो कहते हैं ड्रामा, लेकिन साथ साथ हिलते भी रहते हैं, फिर ये भी कहेंगे क्या ड्रामा में मेरा यही पार्ट है, यही कल्प कल्प होगा। अब यहाँ हमारी बुद्धि हिल रही है, निश्चय बुद्धि से कहीं न कहीं छोटा छेद हमारी नाव में संशय का हो रहा है। ऐसा तो मैंने सोचा नहीं था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे बाबा का सहयोग समय पर नहीं मिल रहा है, अनुभूति नहीं हो रही है कि बाबा मुझे मदद भी कर रहे हैं। अब हमारी तो नैया हिल रही है, क्या इसको पक्का निश्चय कहें? तो ड्रामा पे भी पूरा निश्चय और योग का कवच, हर वक्त अगर हमारा योग का कवच होगा तो माया की गोली असर नहीं करेगी। और यदि थोड़ी देर के लिए कवच छोड़ देंगे तो ये तो पता नहीं, क्योंकि माया तो निशाना लगा के बैठी है। जहां हमने थोड़ी लापरवाही की, आलस, अलबेलापन, संग दोष, किसी में भी आके अपने आप को थोड़ा सा हल्का किया, तब क्या होगा? माया की गोली लग जाएगी। आप सबको याद होगा अपने देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, और थोड़ी देर के लिए कहा बस 10 कदम ही तो चलना है, बुलेट प्रूफ सदरी क्यों पहनेंगे, जैकेट क्यों पहनेंगे। लेकिन उसी 10 मिनट में क्या हुआ सबको मालूम है। तो बाबा ने जो हमको ये कवच दिया है इसको सदा ही पहन करके रखना है। तो हमारे को योग नहीं लगाना, लेकिन बाबा ने दिया ही कवच है योग का, वो पहन के रखना है। तो जितना हम इस अपने अस्त्र शस्त्र को इस्तेमाल करेंगे, ज्ञान की तलवार, योग का कवच, ड्रामा की ढाल, इसको कभी नहीं छोड़ना है। और ज्ञान के अंदर वो ताकत है जो हमें बहुत सारे कमियों बुराइयों से बचा के रखती है। इसमें एक छोटी सी कहानी याद आ रही। एक राजघराने के पंडित जी थे, तो वो वहां पर राज परिवार में पूजा पाठ करते थे, और जब उनके बच्चे ने जन्म लिया परिवार में तो उसकी जन्मपत्री में निकला ये बच्चा बहुत बड़ा डाकू बनेगा। एक राज परिवार का जो पुरोहित हो, जिसका खानदान राज परिवार के मंदिर की पूजा करता हो और उसका बच्चा डाकू हो, उनको कितना कष्ट होगा। फिर किसी ज्योतिषी ने कहा इस बच्चे को अगर डाकू से साधु बनाना है, पंडित बनाना है, तो इसको आप गुरुकुल में भेज दो, 25 साल तक वहां ही दीक्षा लेगा, वहीं इसका लालन पालन हो, शिक्षा दीक्षा गुरुकुल में हो। उन्होंने वही किया, तो वहां उसको ज्ञान, हर प्रकार का ज्ञान की दीक्षा मिली। उस शिक्षा ने, उस गुरुकुल की दीक्षा ने उसके संस्कारों को बदल दिया, प्रकांड विद्वान पंडित बन के निकला। अब उसकी इतनी महिमा हुई कि पिता की जगह अब बेटा राजपुरोहित बन गया। लेकिन एक दिन किसी कारणवश राजा पूजा से पहले उठ गए और वो अकेला बैठा रहा। उसके पूर्व संस्कार उसको प्रेरित कर रहे हैं, कौन से? चोरी वाले। और वो चारों तरफ नजर दौड़ाता है तो उसको ज्ञान से काटता जा रहा है कि अगर सोना उठाता हूं तो उसका ये पाप बनेगा, कट गया। हीरे मोती उठाता हूं तो उसका तो ये पाप हो जाएगा। एक एक वस्तु पूरे राजमहल में जहां जहां नजर पड़ी ज्ञान से वो काटता गया, याद आता गया इसका ये दंड होगा, इसका ये पाप बनेगा। लेकिन पूर्व संस्कार उसके ऊपर हावी है, तो एक कोने में जो आटा छाना जाता है, जिसको लोग चोकर भी कहते हैं, आटे की भूसी भी कहते हैं, वो कहीं पड़ी थी। तो उसने कहा मुझे तो गुरुकुल में इसको चोरी करने का कोई पाप बताया ही नहीं गया है, तो उसने उस भूसी को उठाया और अपना पोटली बांधी अंगोछा में, तो जो चोरी करेगा वो भागेगा भी जरूर छिपा के। तो वो पोटली ले करके और बहुत तेजी से उठ के चले गए। अब हरेक की नजरिया, हरेक का दृष्टिकोण अलग अलग है। जो दरबान खड़े हैं, रोज पंडित जी को जो दक्षिणा मिलती थी वो पहुंचाते थे, आज पंडित जी खुद लेके भाग रहे हैं। तो वो कहते लाइए पंडित जी, स्वामी जी हम आपका पहुंचा के आए, तो वो नहीं दे रहे क्योंकि चोरी का माल कैसे दे देंगे। अब जो चोरी करेगा तो चोरी की बहन झूठ है, वो झूठ भी बोलेगा। तो पंडित जी जब घर पहुंचे तो दूसरे दिन वो पूजा पर आए नहीं क्योंकि चोरी किया है। तो जब एक एक राज दरबार से आता था कि चलिए आपको राजा बुला रहे हैं, पूजा का इंतजार कर रहे हैं, तो घर में कह दिया था, कह देना पंडित जी घर पे नहीं है। अब चोरी तो झूठ बुलवाएगा। एक एक आया तो राजा को लगा कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई है, जो मैं ससम्मान विदाई ना देके और पहले उठ गया, तो मुझे अब जाके पंडित जी से क्षमा मांगनी चाहिए, उनके पैर पकड़ करके कि चलिए मुझे माफ कर दीजिए और आप हमारे पूजा पे चलिए, नहीं तो हमारा तो राज चौपट हो जाएगा, इतने दिन से पूजा नहीं हो रही भगवान जी की। जब राजा गए दलबल के साथ, अब कहाँ छिप के जाएंगे, तो वो चारपाई के नीचे छिप गए। तो चोर छिपेगा भी, सब एक्शन हो रहे हैं, लेकिन जो उनके घर की पंडित जी की थी उनको ये समझ थी, समझदार थी कि हमारा दर पीढ़ी वहीं से चल रहा और आगे भी चलेगा। तो वो खुद राजा के आगे हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, माफ करिएगा पंडित जी राजमहल से चोरी करके आए हैं। क्या चोरी किया, कहा भूसी उठा के लाए हैं। अब आप बताइए भूसी का कोई दंड है, देंगे राजा दंड, उसको चोरी मानेंगे नहीं मानेंगे। तो ज्ञान के आधार से, ज्ञान तलवार से जो बहुत कड़े संस्कार थे वो कट गए, और साथ में उसका कुछ भी फल पाप का नहीं, बल्कि राजा खुद उनके पैर छू रहे हैं कि चलिए माफ कर दीजिए मुझे, मैंने आपको विदाई नहीं दी। उस दिन से फिर वो उसका सम्मान पूजा पाठ करने लगे। तो ज्ञान से हमारे सारे पुराने अशुद्ध संस्कार वो सब कट जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा ज्ञान माना समझ, और साथ साथ हमारा बुद्धि योग वहां एकाग्र होगा जब मेरा बाबा मीठा है, ये मीठा परिवार है, ये ब्राह्मण कुल हमारा सर्वोत्तम है, इतना महान है और संगम पर ही मिलता है। तो ये फरिश्तों का परिवार, ईश्वरी परिवार, तो ना केवल बाबा से प्यार, परिवार से भी प्यार, ब्राह्मण कुल से भी प्यार। तो बाबा कहते जब हमारा इतना श्रेष्ठ परिवार है तो हमारा प्यार कहाँ जाएगा, कहीं दुनिया में जाएगा और कहीं हमारा आकर्षण होगा ही नहीं। और आकर्षण तीन बातों में होता है, कहते हम बहुत सत्य प्रिय हैं, हमको सच्चाई पसंद है, झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर क्या कहेंगे, कोई सुंदर चीज होगी वो आकर्षित करेगी। तो शिव बाबा की महिमा में क्या है, पहला ही शब्द आता है सत्यम, फिर शिवम कल्याणकारी और सुंदरम, तो हम और कहीं आकर्षित हो ही नहीं सकते हैं। और आकर्षण अगर इंद्रियों का है तो जो जो आकर्षित होते हैं उसकी रिजल्ट क्या है? आप देखिए, भंवरा रोशनी को देखता है, एक फूलों की सुगंध पे आकर्षित होता है, उसकी रिजल्ट अपने जीवन को गंवा देता है। इसी तरह से एक पतंगा है, रोशनी को बहुत सुंदर को देखता है लेकिन देखने का सुख नहीं लेता, वो जल के अपने जीवन को समाप्त कर देता है। इस तरह मछली है, वो जीव के आकर्षण में फंस जाती है। तो बाबा ने कहा, बच्चे जब तुम्हारा सुंदर परिवार है, सबसे सुंदर ये हमारा संगम युग का रिश्ता नाता है और सबसे सुंदर हमारा बाबा है, तो हम और कहीं आकर्षित होंगे ही नहीं, कहीं आकर्षण नहीं होगा। इसलिए बाबा ने बहुत सुंदर ये गुलदस्ता बनाया है, फूलों का बगीचा बनाया है। और बाबा कहते, बच्चे फूल तो बहुत है, तीन प्रकार का फूल बनो। सबसे पहले रूहे गुलाब बनो, कांटों में रह करके खिला रहता है, खुशबू भी देता है। दूसरा बाबा ने कहा, कमल फूल समान न्यारे बनो, न्यारे बनेंगे तो प्यारे बनेंगे। और तीसरा बाबा ने बताया, सूरजमुखी बनो। सूरजमुखी क्या करता है? सुबह से शाम तक उसका संसार कौन है? सूरज ऑटोमेटिक घूमता रहता है, जिधर सूर्य होगा उधर उसका मुख होगा, इसलिए नाम दिया है सूरजमुखी फूल। हमारा भी संसार कौन है? ज्ञान सूर्य, सर्वशक्तिवान, सर्व गुणों के भंडार, तो हम उसके बच्चे हैं। तो हमारा सुबह से शाम तक ऑटोमेटिक नजर किधर हो? सूर्यमुखी फूल की तरह हमारा वही संसार है। इसलिए साकार में बाबा सुबह कभी कभी जाते थे तो बगीचे से डलिया में फूल लेकर के आते थे और सामने रख देते थे। तो जब क्लास पूरी होती थी तो बाबा कहते थे, आओ बच्चे, आओ बच्चे, इसमें से अपने आप फूल उठा लो, कौन से फूल हो वही उठाना। तो अपने आप को कौन सा फूल समझते हो? आप गुलाब के हो, बेला हो, चंपा हो, चमेली हो, जो भी फूल बाबा के बगिया में होते थे तो इतने बड़े पॉट में लाके बाबा क्लास में रख देते थे। अब आप सोचो कि जब आएंगे, आ तो गए, आओ बच्चे बड़ी खुशी से मंच पर तो आ गए, लेकिन अब उठाएं कौन सा फूल? अगर आपको बुलाया जाए तो शायद आप भी उस समय दुविधा में पड़ जाएंगे। तो बाबा बीच बीच में बच्चों का पेपर लेते थे। आपने बाबा की तस्वीर में देखा होगा, टोली बांटते हुए खुद बाबा अपने हाथ से बांट रहे हैं। तो क्लास के बाद रोज बाबा टोली देते थे। तो कभी कभी बाबा सभा में कहते थे, आओ बच्चे, आज आप बाबा की तरफ से टोली बांटो। एक भाई की तरफ से आए, एक बहन के, तो लगता था आज बहुत बड़ी लॉटरी मिली है। बड़ी फुर्ती से आते थे बाबा के पास, लेकिन हाथ जब बढ़ाते थे बाबा कहते, बच्चे ठहरो। तो दो कमियां होती हैं, एक कमी तो माताओं बहनों में होती है और एक भाइयों में होती है। तो जब बहन हाथ बढ़ाती थी कोई माता, तो बाबा कहते थे बच्ची ठहरो, 6 महीने से रोया तो नहीं है। अब आपको पता है कोमल दिल, 6 महीने में तो जरूर कहीं ना कहीं आंसू आए होंगे, चाहे परिवार की प्रॉब्लम हो, चाहे कहीं कोई ठेस लगी हो, आंसू तो आ जाते हैं। और भाई को कहते थे रुको बच्चे रुको, 6 महीने से गुस्सा तो नहीं किया है। तो फिर क्या होता था, दोनों वहीं के वहीं खड़े रह जाते थे। तो बाबा कहते थे बच्चे अब 6 महीने प्रैक्टिस करना, प्रतिज्ञा करना कि हम जोश आवेश गुस्से में नहीं आएंगे। और बहनों की तरफ क्या बोलते थे, अब हम कभी आंसू नहीं बहाएंगे। तो बाबा कहते थे बच्चे रोता कौन है, विधवाएं रोती हैं। तो तुम्हारा तो शिव साजन है, अमर है, तुम क्यों रोते हो? क्या वो मर गया है क्या जो रोते हो? तो जब भी आंसू आए, कभी भी दिल में ऐसी बात हो, तो मेरा तो शिव साजन है, मैं क्यों रो, मुझे क्या कमी पड़ी है, जो मुझे पलकों पर बिठा के ले चल रहा, मुझे दिल तख्त नशीन बनाया है, भविष्य में भी डबल ताजधारी बना रहा, अभी भी बाबा कहता जिम्मेदारी का ताज, पवित्रता का ताज, बाबा अभी भी डबल ताजधारी। जिसने दिल रूपी तख्त पे बिठा लिया, तो इसी तरह से बाबा बच्चों को कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ाते थे और हिम्मत देते थे। और एक एक बच्चे के अंदर जो विशेषता है, उससे बाबा कार्य लेके आगे बढ़ा देते थे। अगर कोई डॉक्टर आए तो बाबा कहते थे बच्चे तुम डबल डॉक्टर बन जाओ, जिस्मानी डॉक्टर तो हो, रूहानी डॉक्टर बन जाओ। अगर माता बाबा के सामने, अरे बच्ची तुम जगत माता बन जाओ, 4 बच्चों का कल्याण नहीं सारे विश्व की कल्याणी जगत माँ बन जाओ। तो ऐसे बाबा इतना बल भर देते थे, उमंग भर देते थे, तो वो नशा चढ़ा देते थे। अगर कुमारी आए तो, अरे बच्ची तुम तो फूल हो, पवित्र फूल हो, सीढ़ी नहीं चढ़ी हो, उल्टी सीढ़ी उतरनी नहीं है, बहुत बाबा का नाम वाला कर सकते हो, 21 जन्मों का 21 कुल तार सकते हो। तो बाबा एक एक की विशेषताओं का, तो बाबा कहते समझो मैं विशेष आत्मा हूं। परिवार से प्यार हो, तो एक बार मैं सुनाऊं, किसी सेवा केंद्र से टोली में पेड़ा आया था, तब बाबा के सामने छोटा परिवार था, तो बाबा ने उस दिन कहा आज टोली नहीं बांटता हूं, अब देखें बच्चों में कैचिंग पावर कितनी है। तो आप समझ सकते हैं कि बाबा ने पेड़े को यूं यूं फेंका उछाला, तो कैच करने के लिए तो कितने सोचेंगे हम कितना कैच कर लें, अगर आप होते तो आप क्या करते, उस समय दूसरों को चांस देते या कैच करते, क्या करते, जितना ज्यादा कैच कर लें। लिया हमने भी 4 पेड़े कैच कर लिए, छोटे थे दौड़ दौड़ के जल्दी जल्दी कैच कर लिया। तो बाबा ने फिर बुलाया, बच्ची इधर आओ कितना पेड़ा लिया है, मैंने कहा बाबा मुझे 4 मिले मैंने 4 ले लिया। बाबा ने कहा देखो बाबा ये सिखाता है कि जैसे पेड़े को कैच किया, ऐसे बाबा जो बताते हैं उसको कैच करो, उसको जीवन में धारण करो। अच्छा चलो ये तो हुआ, लेकिन ये पेड़े तो गिनती के थे, जितने बच्चे बैठे हैं सबके हक का एक एक था टोली, और जब तुमने 4 ले लिया तो 3 का हक तो मार दिया, तो ला कहता है कि वो तीन पेड़ा लाके बाबा के पास पॉट में रख देना था। बना मेरे बहन भाई हैं, उनको भी बराबर मिले, तो इससे परिवार का प्यार पता चलता है। तो फिर मैंने लाके तीनों पेड़े बाबा को वापस दिया और एक अपना रखा। तो परिवार का प्यार रहे, परिवार बराबर का रहे, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं, बाबा की दोनों भुजाएं हैं, बाबा के नैनों के सभी नूर हैं, बाबा नूरे रतन कहते थे। फिर ऐसे एक दिन पहाड़ी पर गए, तब यहाँ चेरी बहुत होती थी, तो पत्तल का दोना बना के चेरी लेके आए। बाबा को मालूम है कि जो बच्चे ऊपर घूमने जाएंगे, दिलवाड़ा देखने चाहे अचलगढ़ देखने, तो पहाड़ियों से पैदल जाते थे, चेरी जरूर लाएंगे, और बारिश के दिनों में चेरी बहुत पकती थी। तो हम लाए और खुशी खुशी आपस में बांट खा लिए। बाबा ने कहा, बच्ची तुम घूमने गई कुछ नहीं लाई? मैंने कहा, बाबा मैं चेरी लाई थी। लाओ बच्ची कहाँ है? देखो छोटी चीज में बाबा कैसे सिखाते थे। हमने कहा, वो तो बाबा सबने मिलके खा लिया। बाबा ने कहा, बाबा विश्व की बादशाही देता है और तुमने अपनी चेरी खा ली, सब बाबा को दिखाया भी नहीं। तो बड़ों से कभी भी बिना दिखाए नहीं खाना है, नहीं उठाना है। तो एक साकार बाबा, ब्रह्मा बाबा, इतनी बड़ी हस्ती, चेरी की कोई कीमत नहीं है, लेकिन उसमें भी बाबा ने शिक्षा दिया। तो जब परिवार से प्यार होगा तो ये परिवार किसका है, किसका है? फिर हमारी दृष्टि ये नहीं होगी कि हमारा दुनिया अलग है, लौकिक दुनिया है, यही हमारा परिवार है। और ये बाबा का बहुत प्यारा संगम युग का परिवार है, तो बाबा भी याद रहेगा और परिवार से भी प्यार रहेगा। तो केवल बाबा से प्यार है, परिवार से नहीं, ऐसा नहीं। तो इसी तरह से बाबा ने छोटी छोटी बातें सिखाई। एक दिन बाहर बाबा का हाथ पकड़ के चल रहे थे, तो बाहर सड़क का कोई कुत्ता आ गया। बाबा ने कहा, बच्ची भगाओ इसको। तो मैंने कहा, बाबा पांडवों ने तो कुत्ता पाला था, तो एक आप भी पाल लीजिए। कहते, बच्ची मेरे बच्चे जो गॉड के बच्चे, गॉड कहलाते थे, भगवान भगवती कहलाते थे, वो अब क्या बन गए हैं? जीओडी को उल्टा लिखो क्या होगा? तो कहा, उसकी पूंछ को 6 महीना भी नली में रखो तो टेढ़ा रहेगा। तो ये जो मेरे बच्चों के टेढ़े संस्कार हैं, इनको मैं सीधा कर रहा हूं, तो क्या इससे वो कम है? मुझे उनको पालने की जरूरत नहीं है, जो शास्त्रों में आया है। तो वो ही है कि संस्कार को नहीं बदल पा रही है अपनी कमजोरी के कारण, तो उनको पांडवों ने पाला था, तो पांडव पति ने उनको पाला, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। तो तुम बच्चों को अपने संस्कार को सीधा करके दिखाना है। बाबा इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चों के ऊपर, तो संस्कारों को कैसे सीधा करना था। अब वो बाबा के जो महावाक्य, छोटी सी बात थी तो दिमाग में तो रहेगा ना, गूंजता रहेगा, किसने बोला, ये हमको बाबा ने कहा, तो हमें अपने संस्कारों का परिवर्तन करना है। और संस्कार को बदली किया तो संसार हमारा बदल गया, संसार बदल गया, आसुरी संस्कार से दैवी संस्कार, ईश्वरीय संस्कार, तो क्या हो जाएगा? परिवार बदल गया, संसार बदल गया। तो बाबा छोटी छोटी बात इस प्रकार से सिखाते थे। और मम्मा कहती थी कि आप मुरली सुनती हो तो कैसे सुनती हो, किस स्थिति में सुनती हो, हमने कहा सुनते हैं, मम्मा ने कहा नहीं। जब कोई योग कराता है सामने तो नैन खोल करके एकाग्र होकर के दृष्टि लो, जैसे ड्रिल टीचर अगर ड्रिल कराए और ड्रिल करने वाला उसको नहीं देखेगा तो कैसे एक्शन करेगा। और मामा ने कहा कि जब बाबा महावाक्य उच्चारण करते मुरली चलाते हैं तो एकदम अव्यक्त स्थिति में सुनना, उसको ऑब्जर्व करना बाबा क्या कह रहे हैं, और नहीं तो माया वही बीच में ले लेगी और ताकतवर हो जाएगी तो तुम्हारे ऊपर माया वार करेगी, तो मुरली की ताकत तुम्हारे पास नहीं रहेगी। तो मुरली को भी एकाग्र हो करके सुनेंगे तो बाबा से एकाग्रता की लगन योग में हमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वैसे बहुत बातें बाबा ने सुनाई, और दादी जानकी का एक मैं सुनाती हूँ, समय पूरा हुआ, कि संग दोष कैसे लगता है। दादी ने कहा जागते हुए व्यक्ति से तो नहीं, सोते हुए व्यक्ति से भी लगता है। मैंने कहा दादी वो कैसे, तो कहा कि अगर एक रूम में चार लोग पांच लोग आठ लोग सोए हुए हैं, आठ खटिया का भी कमरा है, बेशक मधुबन में भी आए हैं, तो सवेरे जब गीत बजता है अमृत वेले का, मेरे लाडले जागो, तो आंख खुलती है। आंख खुल के उठ के बाबा से गुड मॉर्निंग ना करके वो देखते कौन उठा है और कौन अभी सोया है, तो सोचते हैं अभी तो कोई उठा ही नहीं है, तो ऐसा करता हूँ पांच मिनट के बाद उठेंगे। तो संग ने पांच मिनट को पौने पांच बजा दिया, नींद में सो गए। मना इतना संग दोष से बचना है, जो बाबा ने कहा बच्चे संग दोष अन्न दोष, तो कहाँ कहाँ संग हमारे ऊपर वार करता है इस पर जब हमारा ध्यान रहेगा तो बाबा में भी ध्यान रहेगा और योग लगाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और वो बाबा हमें सारी गुणों का, शक्तियों का, ज्ञान का, संबंध का, सब प्रकार की अनुभूति कराएंगे। जिस रूप से याद करेंगे वो अनुभव होगा, और जरूर है इस भक्ति से यही संकल्प करिएगा कि मुझे अब अनुभव करना है, योग नहीं लगाना है, अनुभव मूर्त बनना है, अनुभवी बन करके औरों को अनुभवी बनाना है। बस ये संकल्प करेंगे तो जरूर है अटेंशन रहेगा और वैसा ही करेंगे। तो ऐसे शब्दों के साथ आप सबसे मिलने का मौका मिला, बहुत भाग्यशाली है जो दूर दूर से आए हुए हमारे भाई बहन हमको मिले, तो हम अपने को धन्य समझते हैं, हमारा परिवार मिला। और ओम शांति।